जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा गीता जयंती महोत्सव के उत्सव पर 27 दिसंबर 2015 को इस्कॉन जयपुर में दिया गया।
गोपी जन बाला धारे भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। बड़ा उत्सव मनाया था, कौन जाने क्या था, ने कमल को मोक्षिका दे दी थी और हम सोच रहे थे कि गीता के विषय में चर्चा करें। ठीक है, गीता का जो ज्ञान है ये पूरे मानव समाज के लिए है, और गीता जयंती के शुभ अवसर पर कुरुक्षेत्र प्रवचन भूमि पर भगवान ने उपदेश दिया था। किसे किसे दिया था, क्यों दिया था अर्जुन को? भगवान के भक्त थे और मित्र। वैसे देखा जाए गीता का ज्ञान सनातन है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले सूर्य के देव विवासवन को, जिनसे ज्ञान पहुंचे मनु को, आगे ईश्वर को। समय के साथ ज्ञान खो गया था, मैं फिर से तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और इसलिए तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। तो इसे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि अगर आप असली संदेश आते हो तो हमें भक्त के माध्यम से प्राप्त करना है। तो 5,000 साल पूर्व भगवान ने उपदेश फिर से दिया अर्जुन को। अर्जुन ने भगवान से पूछा, मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता को जो आपसे पहले प्रकट हो चुके हैं? हमने आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी को उपदेश दिया था, आप कहेंगे कैसे संभव है? तो ने कहा, बहुत बहुत बार तुमने मेरे जन्म लिया है, मैं सब जन्मों का स्मरण कर सकता हूँ और तुमने। तो 5,000 साल पूर्व कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि में ज्योतिषर के स्थान में भगवान ने ये उपदेश दिया। पापा जी कुरुक्षेत्र धाम गए थे 1975 में। उन्हें हमें स्मरण कहा कि छोटा मंदिर था किराए का बंगाली मार्केट में, और नंदा जी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं नंदा, तो वो आए थे। उनके प्रेरणा से कुरुक्षेत्र में काफी उन्नति हुई। तो आए प्रभा जी को मिलने, प्रभा जी से कहने लगे, आप सारे विश्व में मंदिर खोल रहे हो, कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं खोल रहे? प्रभा जी गए कुरुक्षेत्र, मैं भी उनके साथ था दिसंबर में, हमारे अमरीश बोर्ड भी साथ में थे, और प्रभा ने पूरे कुरुक्षेत्र का दर्शन किया। दिल्ली लौटने से पहले ज्योतिषर में पहुंचे प्रभा। ज्योतिषर में आप से जानते होंगे एक बड़ा पेड़ है, यहाँ के कहा जाता है हमारे उपदेश दिया अर्जुन को, तो प्रभुपाद जी ज्योतिषर पहुंचे तो उन्होंने कहा हाँ इस स्थान में मैं मंदिर बनाऊंगा कृष्ण अर्जुन का। और बड़े गहरे परिश्रम से 30 साल और वही 6 घंटे में प्राप्त हुई ज्योतिषर में कृष्ण अर्जुन मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो ज्योतिषर के पवित्र स्थान में भगवान ने गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश है पूरे मानव समाज के लिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये संदेश केवल हिंदुओं के लिए है या भारतीयों के लिए है। भगवान कहते हैं हम बीजा सदा पिता, मैं हूं सब यूनिवर्स बीजा। गीता का अध्ययन भी आवश्यक है। चैतन्य चतुर्विधा में अभी कथा पढ़ते हो, एक जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे जिसका नाम है श्रीरंगम। अब ऐसे कितने भक्तों ने श्रीरंगम मंदिर का दर्शन किया। अच्छा आप ज्यादा यात्रा नहीं करते तो श्रीरंगम में एक ब्राह्मण था जो कि रोज एक ही सामने बैठकर गीता के 18 अध्यायों का उच्चारण करता था। जब वो उच्चारण करता था तो इसके नेत्रों से आंसू बहते थे और शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होते थे। चेतन महाप्रभु तो स्वयं भगवान है तो पहचान गए शुद्ध भक्ति के लक्षण है। तो इन्होंने पूछा एक ब्राह्मण से, ए ब्राह्मण क्या है गीता में जिसके अध्ययन से तुम्हारे शरीर द्वारा शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा मैं तो अनपढ़ हूं पर मेरे गुरु ने आदेश दिया था रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करने के लिए, तो इसलिए मैं इस स्थान में बैठकर रोज 18 अध्यायों का उच्चारण और क्योंकि मैं अनपढ़ हूं कई लोगों का उच्चारण मैं गलत करता हूं और लोग मेरे पर हंसते हैं और कईयों का अर्थ मुझे समझ नहीं आता। और क्योंकि ये गुरु का आदेश था इसलिए मैं इसका पालन कर रहा हूं। और जब मैं देखता हूं कि परम भगवान श्री कृष्ण इतने विनम्रता के साथ अर्जुन के पार्थ साथी बन रहे हैं, अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, तो मैं भगवान की विनम्रता देखता हूँ ये आंसू बहते हैं मेरे नेत्रों से। तो चेतन महाप्रभु ने फिर से गले लगाया और कहा तुम गीता के अर्थ को समझ गए हो, तुम कहते गीता को नहीं समझे। और फिर चेतन महाप्रभु ने उसे अपने साथ 4 महीने रखा और उन्हें गीता का उपदेश दिया। तो ब्राह्मण जी इस कथा में कहते हैं कि ये ब्राह्मण अनपढ़ था, गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, उसे भगवान को भी दर्शन प्राप्त हुआ। तो गीता का जो संदेश है हमें रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ेंगे तो बुद्धि तेज रहेगी। गीता में भगवान क्या उपदेश है, सबसे पहले तो वे गीता द्वारा आपको ये पता लगता है कि परम भगवान कौन है। हम केवल भगवान 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 नहीं कहते, हम ये भी स्थापित करते हैं कि परम भगवान है कौन। अगर कोई आपको कहे पुरुष 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 आपको मेरे नाम से पुकारो तो भगवान का भी नाम है ना। और ये है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन आप परम भगवान, ये निर्णय केवल मेरा नहीं पर असीता देव का व्यास नारदा इसका महान संतों ने निर्णय क्या है कृष्णा के वो भगवान। तो इसलिए अब देखते हो कि गीता में कहा गया है श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं बेचारा भाई परम भगवान की शिक्षा है, क्योंकि परम भगवान की शिक्षा है। आप इसे आज भी पढ़ सकते हो, 500 बार पढ़ सकते हो और थकोगे नहीं। जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र परम भगवान के नामों से अभिन्न है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण दिन रात भी करोगे थकोगे। वादी वादी व्यक्ति खास करके विदेशों में कहते हैं तुम्हें तो भू सवार हो गया, उच्चारण करते हो दिन रात, थकते नहीं तुम लोग, नहीं थकते क्योंकि इनामों में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली है। कोई भौतिक नाम हो, कोई भौतिक फिल्मी गाना हो, अब एक दो तीन बार सुन सकते हो, पर भगवान के नामों का उच्चारण अब दिन रात कर सकते हो, अब तक हो गए। तो इसी प्रकार भगवद गीता क्योंकि दिव्य संदेश है परम भगवान के द्वारा, इसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। अब दिन रात पढ़ोगे थकोगे नहीं। तो गीता जयंती का उपलक्ष्य हम भक्तों का एक निर्णय ये बना चाहिए कि हमें गीता को रोज पढ़ना है। आप कितने भक्त हो रोज गीता को पढ़ते हो? एक निवेदन है, अब सब ये निर्णय लीजिएगा गीता का कम से कम एक श्लोक पढ़ोगे और पढ़ोगे तो उसमें लाभ भी है। गीता द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है कि परम भगवान कौन है, उनका नाम दिया जा रहा है, उनका परिचय दिया जा रहा है। भगवान कहते हैं जो मेरे धाम में लौटते हैं वापस भौतिक जगत में नहीं लौटते। आगे गीता द्वारा हमें आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। अक्सर हम जन्म लेते हैं अज्ञानता में, पलते हैं अज्ञानता में, और अक्सर हमारी मृत्यु भी होती है अज्ञानता में। ब्रह्मांड प्रमी देखो ना भगवान जी गुरु कृष्ण भाई, पर वो भाग्यशाली व्यक्ति अनेक युगों के पश्चात उसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो आप सब यहां उपस्थित हो, आप इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आपने धार्मिक में रुचि है, भक्ति का बीज आपके हृदय में है। और ये दूसरे अध्याय का संदेश क्या है? दूसरे अध्याय में भगवान हमें आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। अब हो कौन, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, ये प्रश्न होते कभी आपने प्राप्त करने का प्रयास किया है? एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में उपदेश दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ की ये शिक्षा दी जाती है मृत्यु के बाद धरती कहा जाता है? तो अज्ञानता में हम आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं जिस प्रकार हम अपने वस्त्रों से शरीर को ढकते हैं, ये शरीर आत्मा को ढकते हैं। जिस प्रकार हम हमारे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, ये देह आत्मा एक देह त्याग कर अगला देह स्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में आत्मा सनातन है, चाहे प्रेत वाकराज है। भगवान ने कहा ना जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। भौतिक ध्येय जो हमारा है ये 6 अवस्थाओं से गुजर कर जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है। तो आत्मा का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों में कहा गया है अगर आप अपने पाप के कोने को लेकर 10,000 हिस्सों में बांटो, उसका एक हिस्सा है आत्मा का भाव, और ये ज्ञान आप शास्त्रों द्वारा प्राप्त कर रहे हो। हमारी आधुनिक युक्ति प्रजा कहती है क्या है प्रमाण, हम उसी में विश्वास करते हैं जिस कार्य को हम देख सकते हैं। क्या है प्रमाण की आत्मा है, तो क्या कुछ प्रमाण है या नहीं है, क्या है, क्या है प्रमाण, आत्मा है तो चेतना रहेगी। भगवान कहते हैं गीता में जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है ना मृत्यु के लिए, वो जानता है कि हर चीज अस्थाई है। ये है गीता का दूसरा उपदेश जो कि आप दूसरे अध्याय में प्राप्त करते हो। महाराचार्य ठाकुर भक्ति विनोद जिन्होंने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, अनेक सुंदर रचनाएं दी हैं, उन्होंने कहा कि दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा की शिक्षा से ही आपका आध्यात्मिक जीवन आरंभ होगा। अज्ञात में हम कहते हैं कहाँ है आत्मा, खाओ पियो जियो, मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाता है। ये अज्ञानी व्यक्ति का विचार, ज्ञानी व्यक्ति का विचार है ये देह है थोड़े समय के लिए, किसी समय में नष्ट हो सकता है, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना है। ये भगवद गीता का एक और विषय समय। समय क्या है, समय है भगवान का प्रतिनिधि। भगवान गीता में कहते हैं समय मेरा प्रतिनिधि है, और समय के माध्यम से हर चीज को मैं नष्ट कर देता हूं। उदाहरण के लिए आज आपका देह बड़ा सुंदर है, सुंदर युवक हो, विश्व की टाइटल जीत गए, वेस्ट तो कल भी सुंदर रहेगा, परसों भी रहेगा। समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। हर सूर्य के जागृत होने से डूबने से हमें ये संदेश मिलता है आपके जीवन में एक दिन काम बच गया है। हम भी आज सोचते हैं नहीं, हम सोचते हैं मृत्यु भी आएगी हमारे से पूछ कर आएगी, एक समय मुखी मरने वाला है। कृष्ण यमराज जी को कहा आप इतनी जल्दी मेरी मृत्यु नहीं ले सकते, आपने मुझे सूचना नहीं दी कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि लोग आप जानते हो धमकी देते हैं आपको ये काम करो हम कचहरी भेज देंगे। तो यमराज जी ने कहा तुम कैसे कहते मैंने सूचना नहीं दी, आज कितने बार है तुम्हारे सिर में, हमारे सिर में तो एक बार भी नहीं है, सारे क्या सारे किसी ने तो कह जाओगे। तो 20 साल पहले कितने बाल थे, पूरा भरा हुआ था, आज तुम्हारी आंखों की क्या योग्यता है, मैं तो लगभग अंधा हो गया हूं। 30 साल पहले क्या योग्यता थी, बहुत आज सुनने की क्या योग्यता है। तो रामायण ने इस प्रकार कई प्रश्न पूछे, रामायण ने कहा मैंने कई नोटिस दिए, तुम्हारे बाल गिरने लगे, तुम्हारे पैर कमजोर होने लगे, तुम्हारी आंखें कमजोर होने लगी, तुम्हारे कान कमजोर होने लगे, तुम्हारे हाथ कमजोर होने लगे, तुमने सबको ध्यान नहीं दिया, वो कहते कि मैंने नोटिस नहीं दिया, इतने नोटिस दिए तुमने सब नोटिस देखिए। तो समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है, इसलिए शास्त्र में कहना है समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। एक प्रसिद्ध भक्त चिनक्य पंडित, चिनक्य पंडित प्रधानमंत्री थे उन्हें हर प्रकार की सुविधा राजा ने दी थी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं कुटिया में ही रहूंगा, क्यों मैं आपके द्वारा कोई आभार कोई सुविधा प्राप्त करूंगा, मुझे आपके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, मैं अपने विचारों को रख नहीं जा रहा। तो जरा के मन कहते हैं को पीना को भी एक पल का भी दुरुपयोग करोगे सारे विश्व के धन से वापस नहीं ला सकते। दूसरे शब्द में हमें समय का उपयोग करना चाहिए भगवत सेवा के। समय हर चीज को नष्ट कर देगा। आज आपके सुंदर रिश्ते हैं, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे इत्यादि, समय क्या कहेगा? समय के साथ सारे रिश्ते टूट जाए। तो हमें समय का उपयोग करना चाहिए किस लिए? मानव सेवा। कई बार आप कहते हैं हाँ धार्मिक जीवन की महत्वपूर्ण काम समझते हैं। एक समय प्रभा जी ने अपने राखी बरन मैगजीन में एक लेख छापा था जिसका नाम था सॉरी नो टाइम। विदेश जाने से पहले प्रभा जी राखी बरन पर से कहा खुद छाप लेते हैं और टॉपिकल इश्यूज पर प्रभा लिखते थे। तो इस लेख में प्रभा जी ने कहा एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति को मिले और प्रभा जी से उनसे निवेदन किया आप अध्यात्मिक हमें रुचि लीजिए गीता पढ़े। बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा स्वामी जी सॉरी मेरे पास समय नहीं है। और क्या हुआ वो हार्ट अटैक। तो हम जानते नहीं कि अन किसी समय भी आ सकता है किसी के लिए, सच है या झूठ? कि जयपुर के मतलब में छूट भी नहीं हुई है, कोई स्पेशल डिस्काउंट है हैं? आप जयपुर वासी हो, कोई डिस्काउंट नहीं है? जयपुर के लोगों को ये कहा गया है चिंता मत करो हम सूचना देंगे। तो समय का हमें जो प्रयोजन हमारे आगे भगवान प्रकृति की चर्चा करते हैं। ये जो प्रकृति है किसके आगे इसे चल रही है? पिता भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति मेरे हिसाब से चल रही है। आपको वर्षा चाहिए, वर्षा के बिना कोई रह सकता है? आपके राजस्थान में तो वैसे भी कम बारिश की होती है ना? तो भगवान कहते हैं गीता में अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वर्षा प्राप्त होती है जब आप यज्ञ करोगे, यज्ञ कारण है धन गिरी होगा। जैसे इस समय अमेरिका के कई सालों में भी वर्षा नहीं है क्योंकि बस टेक्नोलॉजी तो है, अब बारिश की भी पैदा कर सकते हैं। आप गोला मीना में पढ़ते हो इंद्र महाराज के साल में उनके पास 10 लाख आय थी और वो इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे क्योंकि इंद्र देवता वर्षा के स्वामी है। तो उन्होंने पूछा पिता से पिता क्या तैयारी कर रहे हो आप? पिता ने सोचा कि छोटा बच्चा बेटा है क्या समझ पाएगा। पिता नहीं दिया बेटे बताइए क्या यज्ञ किसकी यज्ञ किसकी तैयारी हो रही है? तो क्या चीज की तैयारी हो रही है? तो इंद्र ने क्या कहा बेटा हम लोग किसान है, किसान की सफलता निर्भर है वर्षा के ऊपर। हम देवता इंद्र को प्रसन्न कर रहे हैं। तो यज्ञ बिना प्रगति साथ नहीं देगी। आज के वातावरण में आप देखते हो यज्ञ दिन पे दिन कम होते जा रहा है, इसलिए आप देख रहे हो प्रगति और कष्ट दे रही है। पहाड़ आ जाता है, जल की प्राप्ति नहीं होती, सूखा हो जाता है, भूखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ते जा रहा है। तो ये एक और विषय की तरह ये क्या फिर गीता के कर्मों की चर्चा की जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं हम गीता नहीं पढ़ना चाहते, गीता पढ़ेंगे तो घर में ये भावना प्राप्त समाप्त हो जाएगी काम करने की। गीता भगवान ने क्या कहा है, हे अर्जुन वानर बलि को मुझे अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो, किस लिए? मेरी खुशी के लिए। भगवान ने ये नहीं कहा अच्छा ठीक है अर्जुन तुम मत लड़ो। अर्जुन ने बड़े त्याग की भावना थी। जब अर्जुन उनके भाइयों ने देखा कि इनकी नीयत ये है कि पूरे विश्व की भूमि को अपने पांडव भाइयों ने क्या कहा, आप रखो सब कुछ, हमें केवल 5 गांव दे दो क्योंकि हमारी शक्ति अधिकारी है। जब ये भी प्राप्ति हो तो अंत में कोई उपाय नहीं था। तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि कर्मानि एव अधिकारस्ते, ये श्लोक हर हिंदू जानता है, अपना कर्म करो। तो अग्नि लाइन जो है उसको हम खा जाते हैं। अग्नि लाइन क्या है? कार्य करो पर फल मुझे दो, और हम क्या कहते हैं पता हम भोगेंगे। हमारी मेहनत है, हमारा प्रयास है, हमारा परिश्रम है, फल तो हमें उठाना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं हमारे कीर्तन में क्या होना चाहिए, परम भगवान भोक्ता है आप सफल रहोगे। जब हम ये सोचोगे कि मैं भोक्ता हूँ आप कष्ट कष्ट होंगे। भगवान कहते हैं कि भोक्ता मैं हूं। तो गीता द्वारा हमें भक्ति का संदेश मिल रहा है। कई व्यक्ति ने गीता का अनुवाद किया है, अनुवादक ने अक्सर अपने अपने भावार्थ में जोड़ दिया है। प्रभुपाद जी ने शुद्ध रूप से उसी संदेश को प्रस्तुत किया है बिना किसी बनावटी पन के। इसलिए जब प्रभुपाद जी ने गीता प्रकाशित की उन्होंने कहा श्रीमान भगवद गीता यथारूप। तो कई बार लोग पूछते हैं आपकी गीता दूसरी गीताओं में क्या अंतर है, सारे विश्व यथारूप क्यों? तो बाबा जी समझाते भूमिका में जिस विचारधारा से भगवान ने दिया अर्जुन ने स्वीकार किया उसी विचारधारा से हमें भी करना चाहिए। तो गीता जयंती के उपलक्ष हम भक्तों को एक निर्णय ये लेना चाहिए कि हम गीता को रोज पढ़ेंगे और गीता के संदेश का पालन करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानते, भक्ति के माध्यम से ही तुम मुझे जान सकते हो। तो और भक्ति बहुत सरल है। भगवान ने गीता में कहा प्रथम पुष्प परम चोयम, तुम्हें भक्ति प्रेम और भक्ति के साथ तुम अगर मुझे ध्यान अर्पण करोगे मैं स्वीकार करूं। तो ये प्रश्न उनसे पूछ सकता है कि हम ये प्रेम की भावना को कैसे अनुभव करें। तो ये संभव है साधु संगत के द्वारा। साधु संगत में रहोगे शुद्ध भाव और शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। अभक्त की संगत में रहोगे तो आप अज्ञान में रहोगे। इसलिए शास्त्र में क्या है, साधु संग सर्व शास्त्र काया नाम मात्र साधु संग। तो आप सब को ये नियम बनाना चाहिए, हर एक बार को हमने मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन देना है, उपदेश देना है। साधु संग में रहोगे तो शुद्ध संदेश प्राप्त होगा तो वो संदेश क्या है कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। गीता के अंत में भगवान हमें क्या कहते हैं, सर्वधर्मां भावैकं शरणं, हम तो भगवान। तो गीता का ये है भक्ति का संदेश। और गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, वो धनी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति कौन है, जो मेरा प्रचार करता है उसे ज्यादा प्रिय लगा हुआ है ना। तो कई बार लोग हमें से पूछते हैं हम हमारे प्रिय कैसे बन सकते हैं, ये है शॉर्टकट, छोटा रास्ता। हम लोग वहां हमें आना है ना हांजी की सौदा करने की। कई बार लोग इस मंगे तक जुड़ते हैं तो सौदा करना चाहते हैं, हम हमें दीक्षा चाहिए, सोना माना नहीं, चार माना करेंगे, आठ माना करेंगे। तो कहे तो आप अगर भगवान की प्रिय बनना चाहते हो तो क्या करो, प्रचार। भगवान कहते हैं उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये वो सेवा है जिसके द्वारा परम भगवान को श्रद्धा से प्रसन्न कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं जिस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति जब अंधे व्यक्ति को देखता है गलत रास्ते में चलते हुए वो क्या करता है, उसके हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देता है। उसी प्रकार भगवान का जो भक्त है जब वो देखता है कि लोग भज्जी गलत रास्ते में चल रहे हैं तो उनके हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देते हैं। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और बाबा जी ने कहा सब प्रकार के प्रचार के साधन, प्रचार के अनेक साधन है, सब साधनों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा साधन है, ग्रंथों का। आप सब समझते हो ग्रंथों का वचन, ग्रंथों ग्रंथ है भगवान की वाणी, धर्मांतर ये शास्त्र में जो उपदेश है किसी साधारण व्यक्ति का उपदेश नहीं, ये उपदेश किसे दिया है, परम भगवान। जैसे हमने आरंभ में कहा था भगवान ने उपदेश दिया है किस लिए, मानव समाज के सुधार के लिए, अति सुख के लिए। जिस प्रकार माता पिता की इच्छा रहती है कि उनकी औलाद सुखी रहे, परम भगवान की इच्छा क्या है, हम जो असली सुख प्राप्त करें, जो संभव हो सकता है केवल भक्तियों के माध्यम से। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये बड़ी प्रसिद्ध सेवा है, कठिन सेवा है। कि जब आप प्रचार करने जाते हो ये नहीं कि हर व्यक्ति आपका साथ देता है, कई साथ देते हैं कई साथ नहीं देते। फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्य नंदा हरिदास को कहा घर घर जाकर प्रचार कर लो, और उन्होंने प्रचार आरंभ किया, कईयों ने उनका साथ दिया कईयों ने उनका विरोध किया। तो जब हम प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं कई लोग साथ देते हैं कई लोग इसमें विरोध करते हैं, पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये परम भगवान का आदेश है क्या प्रचार करो। तो गीते के संदेश की बहुत आवश्यकता है। आप मैंने कितने भक्तों जो इस गीता वचन की सेवा में सहयोग दे रहे हो, सब नहीं दे रहे, लगता है कि कई हमको भगवान की कृपा नहीं है। सब जो की सेवा में इस ज्ञान की कमी है समाज में। हमारे परम गुरु जी कहते थे अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो किसी की कमी है ज्ञान की। भारत के कोने कोने में भाव दिया है, पाठशाला है कि नहीं, पर ज्ञान की कमी है। हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाते हैं। मुझे एक बड़ा अध्यापक कह रहा था कि भारत के यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं 100 में से केवल 6 को नौकरी मिलती है, बाकी बेकार घूमते हैं। तो भौतिक समाज में अनेक प्रकार की कमियां हैं। आज समाज में आप क्या देख रहे हो, चिंता तनाव बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमें मन की शांति चाहिए, अगर हमें सुख चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, भगवान के शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान के शरणागत होना है तो क्या करने की आवश्यकता, सबसे पहला आदेश है साधु संग। चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग में रहो। एक ही वहां पर यह होना चाहिए, हर रविवार को हम मंदिर आओगे तो भगवान का दर्शन मिलेगा, और फिर साधु संग में रहोगे तो वही नाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त करोगे। इस कलयुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके विधाओं के रूप में, कली कले विद्वान पर कृष्णा होता है। तो हमारे शास्त्रों में अनेक मंत्रों का उच्चारण है, प्रिय हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र के रूप में कहा गया है। फिर महामंत्र का जाप कीजिए, इस जाप के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। पापा जी ने अक्सर कहा प्रयास करो सोलह माला करने के लिए। जब ब्रह्मा जी ने संस्था की स्थापना की थी उन्होंने 64 माला का कोट दिया, फिर उन्होंने देखा कठिन है भक्त को छूट गई। फिर माला का जाप बहुत आवश्यक है। अब इसे कितने भक्त इस सभा में हरे कृष्ण मंत्र का जाप रोज करते हो, और कितने भक्तों 16 माला का जाप रोज करते हैं, माला का जाप बिल्कुल नहीं करते। तो एक निर्णय ये लीजिएगा कि आप गीता को रोज पढ़ोगे, दूसरा निर्णय आप ये ले सकते हो अगर जाप नहीं कर रहे तो हम जाप करना शुरू कर लेंगे। इतना आप जानते हो जाप करने में कोई नुकसान होने की संभावना है, लाभ होने की संभावना है। आप पूछोगे हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या लाभ होगा, हमें क्या लाभ होगा,
भगवान का प्रेम रस,
भगवत प्रेम। उससे पहले चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चेत दर्पण मार्जना, हमारे हृदय में गहरी मैल है। प्रभु जी कहते थे हमारा हृदय कोले से भी ज्यादा काला है, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर्य का प्रभाव है। जिस प्रकार आपको ऊंचा बुखार हो तो चाहे कितना भी अच्छा भोजन हो आपको टेस्ट नहीं आए, तो काम जो लोग मन में चले रहा इसे अनर्था कहा जाता है। जिसकी आवश्यकता नहीं है, इनके प्रभाव के कारण हम हमारे अति स्वरूप समझ नहीं सकते। तो जाप करोगे की मैल जाप करोगे तो अस्थि आनंद भी प्राप्त कर सकोगे, अनुभूति बनना। हम सब खुशी की खोज में है, जो खुशी आप भौतिक कार्यों के द्वारा प्राप्त करते हो वो किसी समय भी समाप्त हो सकती है। सचुट मानना अरबपति बनना अंबानी जैसे टाटा जैसे क्या हमेशा रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पर भक्ति के माध्यम से जो आनंद प्राप्त होता है केवल बढ़ते जाता है और तो ये महामंत्र जो है, महामंत्र का अर्थ क्या? सबसे प्रसिद्ध मंत्र मन की शांति के लिए। तो अगर आपको मन की शांति चाहिए तो दो उपाय हैं, एक है साधु संग में रहो और दूसरा हरिनाम को जाप करो और गीता का अध्ययन करो। ये दो बहुत आवश्यक है। और आप इतना तो जानते हो ये प्रमाणिक है, ये कुछ कल्पना नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है गीता को पढ़े। तो आप इसे कितने पुत्र ने प्रभाव उठाया था कि आप गीता रोज पढ़ोगे? भूत तो नहीं है कि अपने हाथ करने पर हाथ उठाया था अभी कब मन भूल गए। थोड़ी देर पहले जब हमने पूछा कितने भक्ति जब रोज गीता पढ़ेंगे तब शब्द उठाया था आधे घंटे आधे भक्त। एक निवेदन है आपसे, गीता रोज पढ़िए, पढ़ोगे तो नुकसान है कि लाभ है? गीता भगवान में कुछ अंतर नहीं, ये है भगवान की वाणी। जब भगवान यहाँ पर कल हो चुके थे तो अर्जुन बड़े दुखी हुए, उन्होंने उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जो कि उनके गणेश मित्र सुयोग के कारण संबंध हुए थे, जिसके पश्चात अर्जुन ने हमारी गीता के संदेश का स्मरण आरम्भ किया। जब गीता के संदेश का स्मरण किया तो उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान स्वयं वहां उपस्थित है। तो कि आप गीता पढ़ोगे, आप में से कितने भक्त के पास भगवत गीता यथारूप की कॉपी है? अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, सबके पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उनसे निवेदन है एक एक कॉपी तो दीजिए और एक एक सौ रोज पढ़िए। महामंत्र जाप कीजिए, हर रविवार का कॉपी भक्तों को यही निवेदन है कि आप इस शिक्षा का लाभ उठाओ। अक्सर इसमान के साथ वही भक्त जुड़ते हैं जिनकी भक्ति योग में रुचि है। भागवत में लेने है भक्ति योग, गीता का लेने है भक्ति योग। भक्ति योग का संक्षेप में अर्थ है प्रेम के साथ भगवान की सेवा करना। भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लायक लगाए बिना खाए तो क्या क्या खा लें? पाप खा लें। तो हमारा निर्णय होना चाहिए खाएंगे तो क्या कृष्ण प्रसाद? अब ऐसे कितने भक्त हो जो रोज केवल कृष्ण प्रसाद खाते हो? होटलों में नहीं, जो नहीं खाते कृष्ण प्रसाद उनसे क्या विनती है? प्रसाद खाना शुरू कर दो। और क्या खा सकते क्या नहीं उसका वर्णन भी शास्त्र में है। तो आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल है, कठिन नहीं। और अगर आप इन विधियों का पालन करोगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। तो आप क्या भारी है, आपसे निवेदन है कि आप विचार में सहयोग कीजिए, गीता को बांटिए, मेरा को जाप कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए और साधु संग में रहिए। इस प्रकार आपका जीवन सदा सुखी रहेगा और आप जीवन की समाप्ति में काल काल और चलोगे भगवान के धाम में, किसी प्रकार का क्लेश नहीं। इस तरह से वही बुद्ध धाम कहा जाता है। और आपके भौतिक जगत में खास करके जयपुर में क्लेश ही क्लेश है, यह जगत यहाँ की क्लेश ही क्लेश है। अगर आप क्लेशों से बचना चाहते हो तो क्या है उपाय? आईना को चार गीता का अध्ययन। तो कृपा करके इसका लाभ उठाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट gkgoswami.com।